हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 12। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्यस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 12। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूचि बता रहे हैं, परीक्षितोऽथ राजविशेष जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। परीक्षितोथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम् संस्थान्त पाण्डुपुत्राणाम् वक्षी कृष्ण कथोदयम् परीक्षितोथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम् संस्थान्त पाण्डुपुत्राणाम् वक्षी कृष्ण कथोदयम् परीक्षितोथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणाम् वक्षी कृष्ण कथोदयम् परीक्षितोथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणाम् वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम् परीक्षितोथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणाम् वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम् शब्दों का अर्थ परीक्षितः राजा परीक्षित का अथ इस प्रकार राजर्षि राजा का जो राजाओं में ऋषि था जन्म जन कर्म कर्म विलापनम उद्धार या मोक्ष संस्थान अथवा संसार के परित्याग च पांडुपुत्राणाम तथा पांडु के पुत्रों का वक्षे कहूंगा कृष्ण कथोदय जो भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं को जन्म देने वाला है। अनुवाद सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि राजा परीक्षित के जन्म कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पतित आत्माओं पर इतने सदया हैं कि वे विभिन्न जीवों के मध्य स्वयं अवतार ग्रहण करते हैं और उनके दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य चाहे पुराना हो या नया किंतु यदि उसका संबंध कृष्ण की लीलाओं से है तो उसे भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए। कृष्ण के बिना पुराण तथा महाभारत जैसे पूरक ग्रंथ निरी कहानियां या ऐतिहासिक तथ्य हैं, लेकिन कृष्ण के कहने से कृष्ण के होने से वे दिव्य बन जाते हैं और उनका श्रवण करते ही हम भगवान से दिव्य रूप से जुड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत भी एक पुराण है, लेकिन इस पुराण की विशेषता यह है कि इसमें कृष्ण की लीलाएं पूरक ऐतिहासिक तथ्य न होकर केंद्र बिंदु स्वरूप है। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को निष्कलंक पुराण कहा है, लेकिन भागवत पुराण के अल्पज्ञ भक्तों का एक ऐसा वर्ग है जो प्रारंभिक स्कंदों को पहले समझे बिना दशम स्कंद में वर्णित भगवान की लीलाओं का आस्वादन लेना चाहता है। उनकी यह भ्रांत धारणा है कि अन्य स्कंद भगवान से संबंधित नहीं है, अतएव वे मूर्खतावश दशम स्कंद को पढ़ते हैं। यहाँ पर पाठकों को विशेष स्वरूप से ये बताया जा रहा है कि भागवत के अन्य स्कंद दशम स्कंद की ही भांति महत्वपूर्ण है। पाठकों को चाहिए कि अन्य नौ स्कंदों का तात्पर्य समझे बिना वे दशम स्कंद की विषय वस्तु में प्रवेश करने का प्रयत्न न करें। कृष्ण तथा पांडवों जैसे उनके शुद्ध भक्त एक समान धरातल पर हैं। कृष्ण समस्त रसों वाले अपने भक्तों से रहित नहीं होते और पांडवों जैसे भक्त भी कृष्ण से रहित नहीं होते। भक्त तथा भगवान परस्पर जुड़े होते हैं, वे विलट नहीं किए जा सकते। अतएव उनसे संबंधित बातें कृष्ण कथा ही है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंखुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। पहला स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 12। शौनक आदियों के ऋषियों के इस प्रश्न सुखदेव गोस्वामी के विषय में जो उन्होंने प्रश्न पूछा था श्लोक नंबर 9 में, समय निवृत्ति निरतः सर्वो सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा बृहति मेताम आत्मा राम समभ्यसत, कि वो आत्मा राम थे, निवृत्ति निरत थे, सर्वत्र उपेक्षित थे, फिर उन्होंने भगवान की भक्ति करना क्यों स्टार्ट किया, उन्होंने क्यों इतना महान ग्रंथ पढ़ा। उसका उत्तर दिया सूत गोस्वामी ने, कहा आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथि उपयुक्रमे कुर्वन्ति हैतुकीं भक्ति इत्थं भूत गुणे हरि, के भगवान के गुण ही ऐसे हैं, चाहे वो आत्मा राम हो, चाहे मुनि हो, निर्ग्रंथि हो, धनवान हो या बिल्कुल कंगाल हो, बहुत ज्यादा बोलने वाला हो या फिर बिल्कुल चुप करके बैठे हो, मतलब उसके अंदर कोई भी क्वालिटी क्यों ना हो या कोई भी डिसक्वालिटी क्यों ना हो, भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और जो एक बार भगवान की गुणों की ओर आकर्षित हो जाता है तो उसका पता कैसे चलेगा, हरे गुणाक्षिप्त मतीर भगवान बहादरायण ही अध्ययन महदाख्यानम, कि वो अवश्य अध्ययन करना चाहेगा, अवश्य श्रवण करना चाहेगा, अवश्य भगवान की कथाओं के विषय में जानना चाहेगा, स्वादु स्वादु पदे पदे वो तो तब तक सुनना चाहेगा, रसमालय मुक्ति पर्यंत सुनना चाहेगा, कभी भी ये ऊबेगा नहीं उससे, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि बस अब कृष्ण कथा नहीं होनी, वो सदैव शुद्ध भक्तों के द्वारा श्रवण करना चाहेगा। ये भक्त का एक ना यहाँ पर उदाहरण दिया है श्री सूत गोस्वामी ने, कि भक्त के अंदर एटलीस्ट ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो भगवान के विषय में श्रवण करना चाहता है, भगवान के शब्दों को श्रवण करने की और भगवान के शब्दों को बोलने की उसकी लालसा आजीवन समाप्त नहीं होती है। जीवन समाप्त हो जाए लेकिन उसकी इच्छा, ये तड़प उसके हृदय में अभी तक बनी रहती है कि मैं कृष्ण के विषय में श्रवण करूं और यदि कोई सुनाने वाला नहीं है तो मैं बोलूं, ये उसकी एक भक्त की क्वालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ तक सुनाने के बाद अब आज जो है वो सूत गोस्वामी पहले वाले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। आपको याद होगा चैप्टर 4 श्लोक नंबर 9 में ऋषियों ने एक प्रश्न पूछा था और कहा था, अभिमन्यो सुतम सुतम प्राहुल भागवतोत्तमम तस्य जन्म महाश्चर्यम् कर्माणि च गृणीहिना। अर्थात अभिमन्यु सुतम सूत, हे सूत गोस्वामी, जो अभिमन्यु के पुत्र हैं, अभिमन्यु के पुत्र कौन है, परीक्षित, प्राहुर्भागवतोत्तमम्, कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे। अब वो इतने महान भगवत भक्त थे तस्य जन्म महाश्चर्यम्, उनका जन्म इतना आश्चर्यमय था। कर्माणि च, उनके कर्म में बहुत ज्यादा आश्चर्यमय थे। गृहिणी, तो कृपा करके हमें उनके जन्म और कर्मों के विषय में बताइए, क्योंकि वो महाभागवत हैं, तो अवश्य उनके जन्म का, उनके कर्मों का संबंध कृष्ण से होगा। तो अब उसी के विषय में बता रहे हैं आज के श्लोक में भी कहते हैं, परीक्षितोथ राजर्षे के, हाँ, जो महाराजा परीक्षित थे, वो परीक्षित महाराज होते हुए भी राजर्षि थे, ऋषि, राजा के रूप में ऋषि थे। उन्हें भौतिक किसी वस्तु की कोई आसक्ति नहीं थी, और वो जन्म कर्म विलापनम, उसका जन्म, उनका कर्म और उनका संसार को परित्याग करना, यानी कि उनका मोक्ष होना, कि किस तरह से उनका जन्म हुआ, वो सब आश्चर्य में उन्होंने बताया, पहले ही कह दिया कि जन्म कर्म महाश्चर्य। हमने सुना है कि उनका जन्म कर्म सब महाश्चर्य, वाकई में परीक्षित महाराज का जन्म कितना ज्यादा विस्मयी, कितना ज्यादा आश्चर्यमय था। परीक्षित महाराज का जन्म महा आश्चर्यमय था, क्योंकि अभी तक उनका जन्म नहीं हुआ था, और कितने कितने ऋषि लोग, कितने बड़े बड़े तपस्वी लोग, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक जिस भगवान के लिए, जिस भगवान की एक झलक को दर्शन करने के लिए इतनी तपस्या करते हैं, हम इतनी सारी भक्ति का साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण के दर्शन हो जाए, कृष्ण की एक झलक दिख जाए, तो वो महाराजा परीक्षित कितने महान, उनका जन्म कितना ज्यादा महान है कि अभी वो गर्भ अवस्था में ही है। मतलब गर्भ में लोग तो भगवान की दर्शन करने के लिए जाते हैं, मंदिरों में यहाँ जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, लेकिन भगवान स्वयं आए हैं उनको माता के गर्भ में दर्शन देने के लिए। कितनी आश्चर्यमय उनका जन्म है कि माता के गर्भ में उनको दर्शन देने के लिए आए, वो भी अकेले नहीं, सुदर्शन के साथ। कितना सुंदर, राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि सब लोग को तो दर्शन होता है, परंतु परीक्षित महाराज को कुछ ज्यादा मिला, सुदर्शन के साथ दर्शन, अत्यंत ही सुंदर। और भगवान खाली सुदर्शन लेकर नहीं आए थे, भगवान गदा को और सुदर्शन को लेकर आए थे साथ में। गदा, एक साथ गदा घुमा रहे थे गर्भ की रक्षा करने के लिए, और सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को ना समाप्त कर दिया। तो मतलब भगवान को ऐसा लगा, जब उत्तरा के घर पे अश्वत्थामा ने आक्रमण किया ब्रह्मास्त्र का, तो भगवान इतना ज्यादा व्याकुल हो गए। भगवान अपने भक्त वात्सल्य के कारण ये सोच रहे थे कि मैं खाली सुदर्शन चक्र नहीं लेकर जाता हूँ, कहीं मेरा एक अस्त्र विफल हो गया तो मैं दूसरे का प्रयोग करूंगा। वास्तव में भक्तों, भगवान का हर अस्त्र अमोघ है, परंतु ये भक्तों के प्रति प्रेम का आघात, ये भगवान का प्रदर्शन है कि ना भगवान सोचते हैं कि मैं कैसे भी करके अपने बच्चे की रक्षा करूं। उस टाइम भगवान को अपनी भगवत्ता याद नहीं रहती कि मैं कितना ज्यादा शक्तिमान हूँ, मैं तो जाहिर सी बात है बचा लूंगा, मैं अगर बगैर हथियार के भी जाऊंगा तो भी उसको बचा लूंगा। लेकिन भगवान को, जैसे माँ कितनी व्याकुल हो जाती है, उसको कितना डर होता है कि पता नहीं मैं अपने बच्चे की रक्षा कैसे करूं, तो हर टाइप से वो सुरक्षा ढूंढ रही होती है। उस माँ को हमेशा ये भय रहता है कि कहीं मुझसे कोई चूक न रह जाए, मैं पूरा प्रबंध करूं अपने बच्चे की सुरक्षा का। इस तरह भगवान जो है, जो पूर्ण समर्पित जीव होते हैं ना भगवान के, उनको भगवान को उनकी इतनी फिकर होती है कि भगवान स्वयं भी सोचते हैं कि कहीं मुझसे कोई चूक न रह जाए। ऐसे भगवान गदा और ना सुदर्शन चक्र दोनों लेकर घर में पधारे हैं। परीक्षित महाराज सारा जीवन उस एक दृश्य को ढूंढ रहे थे, मतलब याद रखते थे सदैव, उनको बार बार वो सीन याद आता था अपने जीवन में, भगवान गदा का घुमाना, भगवान के सुदर्शन चक्र का घुमाना, वो मंद मंद मुस्कान, वो जैसे उनका जन्म हुआ उस समय भी वो देख रहे हैं ध्यान से हर किसी के फेस में कि वो कौन था। वो इतना सुंदर दर्शन जो मुझे गर्भ में हुआ था, मुझे वो देखना, देख रहे हैं, मतलब ऐसे। इसीलिए उनका नाम परीक्षित रखा गया, क्योंकि वो परीक्षा कर रहे थे, वो ढूंढ रहे थे उस व्यक्ति को, उस भगवान को जिसका दर्शन उसे गर्भ में हुआ। तो उनका जन्म कितना आश्चर्यमय, जन्म लेने के बाद बहुत बहुत तपस्या करने के बाद जिसके दर्शन होते हैं, उनके दर्शन उन्हें बगैर किसी तपस्या के गर्भ में आकर हुए इतनी, और गर्भ में क्योंकि बहुत ही दुखमयी अवस्था होती है, लेकिन जहाँ भगवान आ गए होंगे वो कितना आनंदित वो समय होगा उनके लिए कि गर्भ अवस्था में उनको भगवान के दर्शन हुए। जन्म कर्म, और उनका कर्म भी बहुत आश्चर्यमय था। कर्म कैसे आश्चर्यमय था कि उन्होंने किया क्या था। साधारण लोग तो किसी है ना अपराधी को अपने देश में आने से रोक सकते हैं किसी, लेकिन उन्होंने साक्षात कलयुग का दमन किया, कलयुग को बोल दिया कि आप मेरे शासन में नहीं आ सकते, कलयुग को आने से रोक दिया। वास्तव में कलयुग एक काल है, काल मतलब समय, समय को कोई कैसे आने से रोक सकता है। जैसे सुबह है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि अब बस शाम सुबह ही रहे, कभी शाम नहीं। कोई भी ऐसा राजा नहीं हो सकता जो शाम होने से रोक दे। जैसे आज अगर वेनसडे है तो कोई भी राजा कितना ही महान क्यों ना हो, ये नहीं कह सकता कि भाई थर्सडे नहीं आना चाहिए, बस वेनसडे ही रहे। लेकिन उन्होंने कह दिया कलयुग को कि जब तक मैं पृथ्वी पर हूँ द्वापर युग से कलयुग नहीं आ सकता, मेरे राज्य में तो कम से कम नहीं आ सकता। उन्होंने काल का दमन, कितना महान कार्य किया उन्होंने कि कलयुग को अपने राज्य में आने से रोक दिया। और उसके अलावा विलापनम, विलापनम का मतलब होता है उद्धार, उनका निधन विशेष है। उद्धार उनका कितना आश्चर्यमय है कि अब जीव पूरा जीवन जब भगवान की भक्ति करता है तो भी उसे पता नहीं होता है कि पता नहीं अंत में क्या होगा। भगवान कहते हैं अंत काले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर, किसी को पता ही नहीं होता कि कब मेरी मृत्यु होगी तो मैं उस समय भगवान का स्मरण करूं, है ना। ये कितनी आश्चर्यमय बात है कि 7 दिन पड़े हुए, अभी तक 7 दिन है और 7 दिन का समय मिला उनको कि अब 7 दिन में तुम्हें जैसी भक्ति करनी है करो, 7 दिन के बाद तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। ये निश्चित हो गया उस समय, जिस समय उन्होंने ये निश्चित किया कि मैं भागवत श्रवण करूंगा। और जैसे मतलब ये कितनी हैरत की बात है कि उनको पहले से ही, यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कि भागवतम में बड़े बड़े ऋषि मुनि जो वहां पर बैठे हुए थे, सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से जो कथा सुन रहे थे, भागवतम श्रवण कर रहे थे, उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी, परीक्षित महाराज को ये बोल दिया था कि जब तक आप भगवान के धाम नहीं जाते हम यहीं पर आपके साथ बैठे हुए हैं, हम देखना चाहते हैं कि भागवत श्रवण करने से कैसे जीव भगवान के धाम में जाना जाता है। और भागवत साक्षी है कि उनको भगवान के धाम जाते हुए विमान में बैठकर भगवान के धाम में जाते हुए सबने देखा। कितनी हैरत की बात है, कितना आश्चर्यमय उनका यह विलापनम है, निधन है उनका। ये मोक्ष कितना आश्चर्यमय कि मोक्ष की गारंटी है पहले से उनके पास के। और देखो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है वो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। उसको अध्ययन करेंगे, यदि उसको श्रवण करेंगे नित्यम भागवत सेवया, तो डेफिनेटली हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, भगवान के ना लोक को प्राप्त करेंगे। ये सबूत है परीक्षित महाराज कि हम अब यहाँ के जीव जो है वो ये बात को समझना नहीं चाहते, स्वीकारना नहीं चाहते, भागवतम को वैल्यू नहीं देते हैं और अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और सोचते हैं इससे हमें सुख मिलेगा, इससे हमें मोक्ष मिलेगा। कहाँ लिखा है भागवतम के अतिरिक्त और किसी शास्त्र के पढ़ने से आपको मोक्ष मिलेगा, कहाँ लिखा है। भागवतम में, केवल भागवतम ही एक ऐसा शास्त्र है जिसके एक एक शब्द में कृष्ण है, एक एक श्लोक में कृष्ण है, केवल कृष्ण प्रेम कृष्ण लीला है। यदि जब तक जीव इनको श्रवण, क्योंकि भगवान ने साफ कह दिया अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, केवल मेरे बारे में यदि श्रवण करोगे, मेरे बारे में यदि सुनोगे, मेरे मुझे यदि तुम है ना उस समय स्मरण करोगे तो तुम आओगे मेरे धाम में। और केवल भागवतम ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसको पढ़ने से हम भगवान को स्मरण करते हैं, जिसको पढ़ने से हम भगवान, हमारा मन भगवान की श्री चरणों से हट ही नहीं सकता। अगर हम प्रयत्न भी करें ना, भागवतम पढ़ें, भागवतम को श्रवण कर रहे हों और प्रयत्न करें कि नहीं अभी मन थोड़ा भगवान के चरणों से हटाना चाहते हैं, तो प्रयत्न करने पर भी नहीं हटा सकते, तो उसी समय एक अंत समय भी आ जाएगा और भगवान के धाम सुनिश्चित गारंटी है उस व्यक्ति की जो सदैव भागवतम को श्रवण करता है तो वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। तो ये परीक्षित महाराज का जन्म, परीक्षित महाराज के कर्म और उनका निधन सब आश्चर्यमय है। क्यों? क्योंकि उनका संबंध कृष्ण से है, उनके जन्म का संबंध कृष्ण से है, उनके कर्म का संबंध कृष्ण से है, उनके मोक्ष का संबंध कृष्ण से है। तो जब जिन कथाओं का संबंध कृष्ण से संबंधित होता है, देखो आगे कहते हैं संस्थान च पांडु पुत्राणां, संस्थान का मतलब होता है कि संसार का परित्याग, पांडु पुत्रों ने कैसे संसार का परित्याग किया वो सब मैं आपको वक्षे मतलब कहूंगा। तो यहाँ यह प्रश्न अगर कोई कहे कि अभी तो हम बोल रहे हैं कि कृष्ण कथा होगी और अभी परीक्षित महाराज के जन्म कर्म और कर्म की कथा हो रही है और यहाँ पर संस्थान से पांडु पुत्रों के ग्रह त्याग की कथा हो रही है, तो यहाँ पर कृष्ण की बात का, तो यहाँ पर इस बात को क्लियर करने के लिए सूत गोस्वामी कहते हैं वक्षे कृष्ण कथोदयम्। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी कथाएं कृष्ण से संबंध है, कृष्ण की दिव्य कथा इन कथोदयम, ये वो द्वार, एक मतलब कृष्ण की कथा एक बहुत बड़ा भवन हो, उसके अंदर केवल रस ही रस हो, लेकिन उस भवन के अंदर जाने का एक दरवाजा होता है, उस दरवाजा, अब दरवाजे को खोलने के लिए आप अंदर जाने के लिए आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा। कोई बोले बेवकूफ कि आपको तो रस पीना है तो फिर आप दरवाजा क्यों खोल रहे हो, तो जाहिर सी बात है रस पीने के लिए दरवाजा खोल के ही अंदर जाना है ना मुझे, तो फिर ये ऐसे बोलते हैं वक्षे कृष्ण कथोदयम कि जब भगवान के भक्त की बात आती है ना, क्योंकि भगवान के भक्त का हर एक क्षण जो है वो कृष्ण से संबंधित होता है, तो ये जो कथाएं अभी हम पढ़ेंगे परीक्षित महाराज की या पांडु पुत्रों की, इन कथाओं से कृष्ण कथा का उदय होगा, कृष्ण कथोदयम, यानी कि जिस तरह सूर्य उदय होता है उसके लिए एक दिशा चाहिए होती है, उसी तरह से कृष्ण कथा का उदय करने के लिए सूत गोस्वामी उनके भक्तों का सहारा ले रहे हैं कि भक्तों की लीला, ज्यादातर जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं, सारी लीलाएं जो है मतलब बचपन की अगर लीलाओं को साइड में रखते हैं वो तो दसम स्कंद में आएंगी, लेकिन बाकी भगवान की बहुत सारी, कृष्ण का संबंध पांडवों से इतना गहरा है कि सारी लीलाओं में कृष्ण ही कृष्ण है, पांडवों के जीवन में केवल कृष्ण है, एक एक कदम में कृष्ण है, पांडवों का जीवन कृष्ण लीला से बिल्कुल रचा बसा हुआ है। वास्तव में भक्तों हमें ऋणी होना है इन पांडव परिवार के जितने भी पात्र हैं ना उनसे, पांडव परिवार के ये जो सदस्य हैं, स्पेशली अर्जुन, अर्जुन की कृपा, भगवान के साथ उनका ऐसा संबंध था जिनकी कृपा के कारण हमें आज श्रीमद् भगवद गीता प्राप्त हुई, और उसी अर्जुन के पौत्र, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, और उसके कारण हमें भागवतम प्राप्त हुआ। ये दोनों ग्रंथ जो कि हमारे जीवन को बिल्कुल कृष्णमयी कर देते हैं। ये दोनों ग्रंथ हमें पांडव परिवार ने प्रदान किए हैं, तो इनके विषय में सूत गोस्वामी बता रहे हैं। और इनके विषय में पढ़ने से क्षण क्षण में कृष्ण कथा उदय होगी, एक एक पंक्त में कृष्ण कथा। इसलिए तो कह रहे हैं संस्थान से पांडु पुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। मैं इसलिए इनकी कथा बता रहा हूँ क्योंकि कृष्ण कथा उदय होती है, कृष्ण कथा का प्रकाशन होता है। तो सूत गोस्वामी यहाँ पर परीक्षित महाराज का जो रक्षा परीक्षित महाराज के भगवान ने गर्भ में किस तरह की वो बताना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले कि ब्रह्मास्त्र जिसे उन्होंने चलाया था अश्वत्थामा ने, वो किस प्रकार चलाया उसके विषय में वो डिटेल से बताएंगे और सीरीज में आगे जाएंगे। और आगे हमें एक एक पग पर कृष्ण कथा के विषय में आनंद प्राप्त होगा। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये कृष्ण की कृपा ही है, कृष्ण की करुणा ही है। कृष्ण को क्या आवश्यकता है संसार में आने की, या इस संसार में कोई जीव यदि कोई कार्य कर रहे हैं उनके कार्यकलापों में उनका सहायक बनने की, उनमें भाग लेने की भगवान को जरूरत क्या है। वो त्रिलोकी के नाथ है, एक इशारे से ये महाभारत युद्ध को खत्म कर सकते थे, सारे पांडव और पांडवों को हारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान वहां से यदि इशारा कर देते तो फिर सारे कौरवों को का सर्वनाश कर सकते थे। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है कि इस संसार में आए और एक एक बार बार उनको है ना ये बनने की, सारथी बनने की भी जरूरत नहीं थी। उनको यहाँ पर आके किसी को कोई उपदेश करने की भी जरूरत नहीं थी। भगवान के एक इशारे से सब कुछ हो सकता था। लेकिन ये भगवान की इतनी करुणा है, भगवान इतने करुणामयी है, इतने दयामयी है कि पतित आत्माओं पर कृपा करने के लिए वो इस संसार में अवतरित होते हैं। और जो उनके भक्त होते हैं उनके दयनीय कार्यकलापों में उनका उनकी सहायता करते हैं, उनको उन भगवान भाग लेते हैं। कभी सारथी बनकर आते हैं, कभी पुत्र बनकर आते हैं, कभी सखा बनकर आते हैं। तो ये भगवान की केवल करुणा है क्योंकि वो ऐसी लीलाएं करेंगे और जब वो ऐसी लीलाएं करके पुनः अपने धाम चले जाएंगे तो हम जैसे पापी लोग भगवान के विषय में बोलेंगे, भगवान की कथा को कहेंगे, भगवान की कथा को श्रवण करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इसलिए भगवान समस्त जीवों पर कल्याण करने के लिए ही ऐसे कार्यकलाप करते हैं। वह शास्त्र दिव्य होता है, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वो कितने दिव्य शास्त्र होते हैं जिनका संबंध कृष्ण लीला से होता है। अगर कृष्ण लीला नहीं है तो फिर जितने भी दूसरे शास्त्र हैं, भले कोई भी हो, महाभारत हो या कोई भी हो, अगर उसमें से कृष्ण को निकाल दिया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ निरी कहानियां हैं। बस ऐसे ही जैसे दूसरी आप कैसे राजा रानी की कहानियां पढ़ते हो, इसी प्रकार। लेकिन यदि उसमें कृष्ण को सम्मिलित किया जाता है तो कृष्ण के होने से वो दिव्य हो जाता है, वो ग्रंथ जो है वो दिव्य बन जाता है। और अगर हम ऐसे ग्रंथ को श्रवण करते हैं जिसके अंदर कृष्ण का संबंध होता है, भगवान के दिव्य रूप से अगर वो जुड़ा हुआ होता है तो फिर वह शास्त्र जो है वो हमारे जीवन को कल्याणमय कर देता है। परंतु यह श्रीमद् भागवतम एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसमें कृष्ण ही केंद्र बिंदु है, यानी कि पूरा का पूरा डिपेंड ही श्रीमद् भागवतम जो है वो कृष्ण लीला पर करता है। स्टार्ट से लेकर अंत तक केवल कृष्ण कथा ही हमें सुनने को मिलेगी, केवल कृष्ण से ही रिलेटेड एक एक शब्द है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम को क्या कहते हैं, निष्कलंक पुराण अमलम, श्रीमद् भागवतम अमलम, कि इसके अंदर कोई कलंक नहीं है। वास्तव में कलंक क्या है, कृष्ण से हटकर सा हानि तन महत् छिद्रम सा मोह सच विभ्रम। वो मनुष्य की सबसे बड़ी हानि क्या है कि वो कृष्ण के अतिरिक्त किसी और के विषय में कुछ सुनता है तो समझो उसका वह समय बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो श्रीमद् भागवतम का एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो कृष्ण से रिलेटेड ना हो। इसीलिए क्योंकि केंद्र बिंदु कृष्ण है तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये निष्कलंक पुराण है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक बहुत ही दुखदायक बात बताते हैं, वो ये कि कुछ पाठक ऐसे होते हैं श्रीमद् भागवतम को स्टार्ट से पढ़ने में कोई रुचि नहीं रखते। वो समझते हैं कि स्टार्ट में कुछ भी नहीं है, बस शुरू के 9 स्कंद ऐसे ही हैं, उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें दसम स्कंद पढ़ना चाहिए। और दसम स्कंद में डायरेक्ट से भगवान की लीलाओं को पढ़ते हैं, उनके गोपियों के साथ प्रेम व्यवहार को, या फिर दूसरी भी जितनी उनकी लीलाएं उनके विषय में पढ़ते हैं, अपराध कर बैठते हैं। क्योंकि वास्तव में भागवतम को स्टार्ट से पढ़ना चाहिए, शुरू से लेकर अंत तक। जब हम धीरे 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 क्रमशः आगे बढ़ेंगे, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे, तो फिर हमारा हृदय इतना पवित्र होगा कि हम दसम स्कंद में जब प्रवेश करेंगे तो फिर हम एक एक शब्द का रस लेकर उसको हम अच्छे तरीके से ग्रहण कर सकेंगे। वरना हमारा डाइजेशन सिस्टम इतना खराब होगा, हम शास्त्र को श्रीमद् भागवतम को एक साधारण शास्त्र की तरह यदि पढ़ेंगे और फिर दसम स्कंद में जाकर भगवान की लीलाओं में कोई ना कोई अपराध कर बैठेंगे। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें शुरू से पढ़ना चाहिए। और श्री प्रभुपाद जी कहते पाठकों को चाहिए कि अन्य 9 स्कंदों का तात्पर्य समझे बिना वे दशम स्कंद की विषय वस्तु में प्रवेश करने का प्रयत्न ना करें। कृष्ण तथा पांडवों जैसे उनके शुद्ध भक्त एक समान धरातल पर हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि पांडवों की कथा पढ़ के क्या करूं, पांडवों के बारे में पढ़ने का क्या फायदा, परीक्षित के महाराज के बारे में पढ़ने का क्या फायदा, मुझे तो डायरेक्ट से कृष्ण के बारे में पढ़ना चाहिए। तो शुद्ध भक्त जो है वो यहाँ पर बता रहे एक धरातल पर है। कृष्ण कथा उदय होती है शुद्ध भक्त के द्वारा। कृष्ण समस्त रसों वाले अपने भक्तों से रहित नहीं होते और पांडव पुत्र जैसे भक्त कृष्ण से रहित नहीं होते। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि भक्त की कथा अलग होती है, कृष्ण की कथा अलग होती है। कृष्ण अपने भक्तों से कभी अलग नहीं होते और भक्त जो है वो कृष्ण से कभी अलग नहीं होते। अगर किसी भक्त की बात आ रही, किसी शुद्ध वैष्णव की बात आ रही, तो डेफिनेटली उसके साथ कृष्ण की बात आएगी। भक्त तथा भगवान परस्पर जुड़े रहते हैं, वे विलग नहीं किए जा सकते, इसलिए उनसे संबंधित बातें कृष्ण कथा ही हैं। तो हम अब जो पढ़ेंगे वो बहुत ही सुंदर वार्ताएं, बहुत ही सुंदर कथाएं सुत गोस्वामी बताएंगे पांडव के पुत्रों के विषय में और परीक्षित महाराज के विषय में। यह हमारा सौभाग्य है कि हम श्रीमद् भागवतम महापुराण को पढ़ने का हमें भगवान ने अवसर दिया है। कृपया आप सब साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि कल से बहुत ही मुख्य टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। कल आज रिलैक्स हो जाओ, छोटा श्लोक है, कल 13 और 14 दोनों मिक्स हैं और बड़ी मतलब समझो एक पूरा महाभारत है, उसको हम अच्छे तरीके से पढ़ने का, एक एक शब्द को समझने का प्रयत्न करेंगे। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। हरे कृष्ण।